ईरान और इसराइल में बढ़ते संघर्ष के बीच वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार नज़र बनाए हुए है। ईरान में लगभग 7,000 भारतीयों के अभी होने का अनुमान है। ज़्यादातर पढ़ाई करने गए छात्रों को वहां से सुरक्षित निकालने की मुहिम शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंधु के नाम से शुरू किए गए अभियान में 110 लोगों की वापसी हो चुकी है। गुरुवार को पहला जत्था भारत पहुँच गया। इसमें ज़्यादातर कश्मीरी छात्र हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि लगभग 1,400 कश्मीरी छात्र ईरान में फंसे हुए हैं।
जो हमने मालूम किया है, लगभग कोई 1,300 जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं, कुल मिला के मुल्क के शायद जो कोई 6,000-8,000 के दरमियान है, 1,500 के आसपास, 1,300-1,400 के आसपास जम्मू कश्मीर।
उनको निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा उमर अब्दुल्ला कहते हैं।
ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने के लिए गए, अब हालात बिगड़ गए हैं और उनके माँ बाप जाहिर सी बात है परेशान होंगे। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी परेशान होता और बच्चे भी वहाँ से निकलना चाहते थे। तो कुछ दिन पहले मैंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से बात की और हमने एक प्लान जो है वो तैयार किया। उस प्लान के तहत अब इन बच्चों को लाया जा रहा है।
इसराइल में रहने वाले भारतीयों को भी ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि जो भारतीय वापस आना चाहते हैं उनके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भाजपा ने ऑपरेशन सिंधु की सराहना की है। भाजपा नेता तरुण चुग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा,
26 मई 2014 के बाद जब भी विश्व में कभी भी भारतीयों पर संकट आया तो भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नागरिकों को वहां से निकाला, चाहे ऑपरेशन गंगा हो, मिडल ईस्ट से नर्सिंग निकालने की बात हो, नेपाल का भूकंप हो, या यूक्रेन रूस युद्ध हो, या इसराइल ईरान की वॉर हो, भारत का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए बहुमूल्य है और भारत के हर नागरिक की सुरक्षा उसको लेके आना हमारा दायित्व है और हमने इसे बेखूबी निभाया है।
बिहार विधानसभा के चुनाव अभी 2-3 महीने दूर हैं, लेकिन राज्य में माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बिहार का दौरा कर रहे हैं। राज्य के सिवान में होने वाले कुछ कार्यक्रमों में वे भाग लेंगे और एक रैली भी करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने इस दौरे को राज्य के लिए लाभकारी बताया।
खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए।
बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सवाल उठाया है। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बारे में कहते हैं,
प्रधानमंत्री जी पलायन रोकने थोड़ी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात करने थोड़ी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फिर से ठगने आ रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण देने आ रहे हैं, लालू जी हम लोग को गाली देने आ रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने भाजपा जेडीयू की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की सरकार पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। इस पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
कई लोग हैं जो कि चाहते नहीं हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए और इसी सोच के साथ वो निरंतरता में आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी आज ही ओडिशा के दौरे पर भी जाएंगे, वहां भी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत उनको करनी है। इसके अलावा भुवनेश्वर में एक जनसभा भी आयोजित की गई है। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत में तैयारियां की जा रही हैं। गांव और छोटे शहरों में भी योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी सामूहिक योग कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। योग दिवस पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई राज्यों ने इसको लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कहा। कांग्रेस पार्टी ने सरकार की विदेश नीति पर एक बार फिर सवाल उठाया है। पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लंच पर बुलाए जाने की कांग्रेस पार्टी ने आलोचना की है। इसी बहाने सरकार को भी घेरा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट इसको लेकर कहते हैं,
We have to be concerned about if the US president is consistently and continuously saying that he brokered or he brought about the ceasefire by showing either threat or allurement for a trade deal. This is something that Donald Trump has said multiple times on many occasions. Of course, MEA spokesperson have denied that, but I think from the highest levels, that statement should be contradicted if it's untrue. A. B. By hosting the Pakistani Army Chief at the White House, it's a clear indication of how the White House and how the US government sees the Indo-Pak situation.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं की वकालत की है, साथ ही अंग्रेजी भाषा पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। गुरुवार को एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति की आभूषण है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब यहाँ अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म महसूस होगी।
हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है।
आपको बता दें कि बहुभाषी भारत में भाषा को लेकर अक्सर विवाद उठता रहता है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध जग जाहिर है। वहीं महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किए जाने की कोशिश का लगातार विरोध होता रहता है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।